This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Hindi, May 2022.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale d'Hindi, May 2022.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Hindi, mayo 2022.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
पाठांश क इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप विद्यालय छात्र प्रतिनिधि द्वारा भाषण सुनेंगे। इसमें वह अपने ग्रामीण एवं शहरी जीवन के अनुभव को बांट उनकी तुलना करता है।
प्यारे ग्रामवासियों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र कप्तान हूँ। आज मैं यहाँ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। आपके परस्पर प्रेम और सहयोग से हमारा मन गदगद हुआ और हम ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूक हुए। नैसर्गिक सौंदर्य में लिपटा गांव का शांत स्वच्छ वातावरण एवं सीधा सादा जीवन सचमुच आनंददायी है। हम शहरी कभी कभी सप्ताहांत शहर से दूर निकलकर ऐसा आनंद पाते हैं। यहाँ रोज सुबह की स्वच्छ हवा में व्यायाम, खेत की तरोताजा सब्जियों से बना शुद्ध सात्विक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन शहरों में पाना दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ की आपाधापी जीवन में खाने की फुर्सत ही कहाँ है। शहरी निरंतर भाग दौड़ में रहते हैं और गाँव में लोग रात जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। तालाबों और नहरों से बहती सुगंधित हवा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर अनायास ही तनाव और थकान दूर हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि आप लोगों में तनाव से उत्पन्न बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नींद न आना और अवसाद न के बराबर हैं, जबकि शहरी महानगरों की प्रदूषित वायु, तनाव और अनिद्रा से उत्पन्न हर समस्या से जूझते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच रहकर हमें ग्रामीण जीवन को करीब से जानने का मौका मिला। आपने हमें भारतीय महान संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज, जिसका आधार स्तंभ पारस्परिक प्रेम है, उसे महसूस करवाया। शहरों में ये केवल आडंबर बनकर रह गया है। आत्मीयता की कमी खलती है। लोग भी ज्यादातर अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। हमने अनुभव किया है कि यहाँ गांव में बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और शहर जाकर विद्योपार्जन कर गांव के हित में कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पक्की सड़कें, बिजली, संगणक केंद्र, बड़ी बड़ी दुकानें, ट्यूशन केंद्र, सिनेमा घर आदि सब उपलब्ध हैं। सचमुच हमारे ग्राम तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। शहरी जीवन भी अपनी शान लिए अनूठा है। यहाँ उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए कई विकल्प, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शहरी प्रभाव के कारण गांव के संसाधनों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, परंतु आज भी हमारे गांव ही अपनी विशाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अपने विद्यालय की ओर से आप सबका आभार प्रकट कर धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्ते।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
प्यारे ग्रामवासियों, नमस्कार। मेरा नाम अंकित शर्मा है। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र कप्तान हूँ। आज मैं यहाँ आप सबका आभार प्रकट करने के लिए उपस्थित हूँ। आपके परस्पर प्रेम और सहयोग से हमारा मन गदगद हुआ और हम ग्रामीण जीवन के प्रति जागरूक हुए। नैसर्गिक सौंदर्य में लिपटा गांव का शांत स्वच्छ वातावरण एवं सीधा सादा जीवन सचमुच आनंददायी है। हम शहरी कभी कभी सप्ताहांत शहर से दूर निकलकर ऐसा आनंद पाते हैं। यहाँ रोज सुबह की स्वच्छ हवा में व्यायाम, खेत की तरोताजा सब्जियों से बना शुद्ध सात्विक पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन शहरों में पाना दुर्लभ है, क्योंकि वहाँ की आपाधापी जीवन में खाने की फुर्सत ही कहाँ है। शहरी निरंतर भाग दौड़ में रहते हैं और गाँव में लोग रात जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठते हैं। तालाबों और नहरों से बहती सुगंधित हवा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर अनायास ही तनाव और थकान दूर हो जाते हैं। शायद यही कारण है कि आप लोगों में तनाव से उत्पन्न बीमारियां जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, नींद न आना और अवसाद न के बराबर हैं, जबकि शहरी महानगरों की प्रदूषित वायु, तनाव और अनिद्रा से उत्पन्न हर समस्या से जूझते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके बीच रहकर हमें ग्रामीण जीवन को करीब से जानने का मौका मिला। आपने हमें भारतीय महान संस्कृति और परंपरा, रीति रिवाज, जिसका आधार स्तंभ पारस्परिक प्रेम है, उसे महसूस करवाया। शहरों में ये केवल आडंबर बनकर रह गया है। आत्मीयता की कमी खलती है। लोग भी ज्यादातर अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं। हमने अनुभव किया है कि यहाँ गांव में बच्चे शिक्षा के प्रति जागरूक हैं और शहर जाकर विद्योपार्जन कर गांव के हित में कार्य करना चाहते हैं। यहाँ पक्की सड़कें, बिजली, संगणक केंद्र, बड़ी बड़ी दुकानें, ट्यूशन केंद्र, सिनेमा घर आदि सब उपलब्ध हैं। सचमुच हमारे ग्राम तरक्की के पथ पर अग्रसर हैं। शहरी जीवन भी अपनी शान लिए अनूठा है। यहाँ उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए कई विकल्प, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़े बड़े अस्पताल हैं आदि। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि शहरी प्रभाव के कारण गांव के संसाधनों में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, परंतु आज भी हमारे गांव ही अपनी विशाल भारतीय सभ्यता और संस्कृति का आधार स्तंभ है। अपने विद्यालय की ओर से आप सबका आभार प्रकट कर धन्यवाद कहना चाहूँगा। नमस्ते।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ख। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
अब आप एक नींद विशेषज्ञ डॉक्टर गिल से नींद के महत्व पर एक वार्ता सुनेंगे।
नमस्ते डॉक्टर गिल, स्वास्थ्य और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस वार्ता में शामिल हो पाया।
डॉक्टर गिल, आप प्रसिद्ध नींद विशेषज्ञ हैं, हमारे दर्शकों को नींद के बारे में कुछ बताइए।
हाँ हाँ जरूर, आज की दौड़ती भागती तनाव भरी जिंदगी में नींद का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि नींद रोगाक्षम तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां आदि में नई जान डालती है।
सही कहा आपने डॉक्टर साहब, परंतु जिस तरह वर्तमान में लोगों के जीवन का तरीका हो गया है, भरपूर नींद ले पाना चुनौती साबित हो रहा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छी नींद से चैतन्यता, कार्यक्षमता एवं सजगता प्रभावित होती है। इससे उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन बढ़ती है। आज की जीवन शैली में लोगों के व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं कि ये नींद को अप्रधान मानने लगे हैं।
जी, देखा गया है कि आज छात्रों में सतर्कता क्षीण होती जा रही है और वे हर वक्त सुस्त नजर आते हैं। क्या नींद से इसका संबंध हो सकता है?
जी हाँ, बिल्कुल संबंध है। सजग रहने के लिए सोना जरूरी है। आजकल छात्र पूरा दिन विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेते हुए संगणक के सामने बैठे रहते हैं, फिर मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे इनकी आंखों की नमी में कमी आती है और ये उनकी नींद बाधित करती है। इसलिए सोना अति आवश्यक है।
डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आज व्यवसायी आमदनी पाने वाले अपने काम को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं। इन्हें नींद की कमी खलती है। इन पर कैसा असर देखने को मिलता है?
देखिए, नींद की कमी का असर हर इंसान, बच्चे बूढ़े पर दिखता है। इससे लोग अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं और ये हमेशा उलझे नजर आते हैं और ध्यान केंद्रीकरण में बाधा आती है। अक्सर लोग नींद की कमी के कारण सड़क, कार्यालय अथवा फैक्ट्री में दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, वैसे 7-9 घंटे की नींद पाने वाले सचमुच भाग्यशाली हैं। मैंने पढ़ा है कि नींद कई प्रकार की होती है, इस पर कुछ रोशनी डालिए।
जी, ये 3 प्रकार की हैं। पहली स्वाभाविक नींद, इसमें व्यक्ति स्वभाव से सो जाते हैं। दूसरी तामसी नींद, जिसमें नींद से उठने के बाद भी व्यक्ति फिर सो जाता है। तीसरी नींद विकारी नींद, जिसमें बीमारी से उठने के बाद व्यक्ति ज्यादा सोता है। ये नींद आलस्य पैदा करता है।
डॉक्टर साहब, कृपया नींद स्वच्छता पर कुछ रोशनी डालिए।
नींद स्वच्छता पर कहने के लिए बहुत अधिक है, परंतु मैं संक्षेप में कहूंगा कि रात को भोजन जल्दी करें, समय पर सोएं।
हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय और विचार बांटने के लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्ते डॉक्टर गेल, स्वास्थ्य और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार, मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस वार्ता में शामिल हो पाया।
डॉक्टर गेल, आप प्रसिद्ध नींद विशेषज्ञ हैं। हमारे दर्शकों को नींद के बारे में कुछ बताइए।
हाँ हाँ जरूर, आज की दौड़ती भागती तनाव भरी जिंदगी में नींद का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि नींद रोगक्ष्म तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां आदि में नई जान डालती है।
सही कहा आपने डॉक्टर साहब, परंतु जिस तरह वर्तमान में लोगों के जीवन का तरीका हो गया है, भरपूर नींद ले पाना चुनौती साबित हो रहा है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अच्छी नींद से चैतन्यता, कार्यक्षमता एवं सजगता प्रभावित होती है। इससे उत्पादकता, रचनात्मकता और मानसिक संतुलन बढ़ती है। आज की जीवन शैली में लोगों के व्यस्तताएं इतनी बढ़ गई हैं कि ये नींद को अप्रधान मानने लगे हैं।
जी, देखा गया है कि आज छात्रों में सतर्कता क्षीण होती जा रही है और वे हर वक्त सुस्त नजर आते हैं। क्या नींद से इसका संबंध हो सकता है?
जी हाँ बिल्कुल संबंध है। सजग रहने के लिए सोना जरूरी है। आजकल छात्र पूरा दिन विद्यालयी गतिविधियों में भाग लेते हुए संगणक के सामने बैठे रहते हैं, फिर मोबाइल पर लगे रहते हैं, जिससे इनकी आंखों की नमी में कमी आती है और ये उनकी नींद बाधित करती है। इसलिए सोना अति आवश्यक है।
डॉक्टर साहब, देखा गया है कि आज व्यवसायी आमदनी पाने वाले अपने काम को लेकर तनावग्रस्त रहते हैं, इन्हें नींद की कमी खलती है, इन पर कैसा असर देखने को मिलता है?
देखिए, नींद की कमी का असर हर इंसान बच्चे बूढ़े पर दिखता है। इससे लोग अपनी कार्य क्षमता खो देते हैं और ये हमेशा उलझे नजर आते हैं और ध्यान केंद्रीकरण में बाधा आती है। अक्सर लोग नींद की कमी के कारण सड़क, कार्यालय अथवा फैक्ट्री में दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं।
जी डॉक्टर साहब, वैसे 7-9 घंटे की नींद पाने वाले सचमुच भाग्यशाली हैं। मैंने पढ़ा है कि नींद कई प्रकार की होती है, इस पर कुछ रोशनी डालिए।
जी, ये 3 प्रकार की हैं। पहली स्वाभाविक नींद, इसमें व्यक्ति स्वभाव से सो जाते हैं। दूसरी तामसी नींद, जिसमें नींद से उठने के बाद भी व्यक्ति फिर सो जाता है। तीसरी नींद विकारी नींद, जिसमें बीमारी से उठने के बाद व्यक्ति ज्यादा सोता है। ये नींद आलस्य पैदा करता है।
डॉक्टर साहब, कृपया नींद स्वच्छता पर कुछ रोशनी डालिए।
नींद स्वच्छता पर कहने के लिए बहुत अधिक है, परंतु मैं संक्षेप में कहूंगा कि रात को भोजन जल्दी करें, समय पर सोएं।
हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय और विचार बांटने के लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास 2 मिनट 30 सेकंड हैं। पाठांश ग। इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए अब आपके पास 4 मिनट हैं।
आज कला दर्शन कार्यक्रम में हम कलमकारी चित्रण में उभरती कलाकार स्नेहा रेड्डी से उनके विचार सुनेंगे।
नमस्ते, आप सबको स्नेहा रेड्डी का प्रणाम। आज कला प्रेमियों के मध्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको कलमकारी जैसी प्राचीन कला की श्रम साध्य प्रक्रिया और उसकी कुछ बारीकियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सब जानते ही होंगे कि चित्रकारी की परंपरा सदियों पहले विकसित हुई है। कलमकारी हस्तकला की प्राचीनतम शैली में से एक है। कलमकारी यानी कलम की कारीगरी, कलम यानी पेन और कारी यानी करने वाला है। वनस्पति रंगों से कपड़े पर बने इस चित्रकारी ने स्थानीय मंदिरों में अपना आश्रय पाया और घुमंतु गवैये गांव-गांव जाकर चित्रकारी पर आधारित हिंदू पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। मैं यहां बताना चाहूंगी कि भारत में चित्रकारी के जरिए कहानी सुनाने की कई परंपराएं हैं। कलमकारी में दो प्रमुख शैली विख्यात हैं, कालहस्ती शैली और मछलीपुरम शैली। कालहस्ती शैली में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपुरम में ठप्पों, जिन पर महीन कारीगरी होती है, का उपयोग होता है। जब मैंने इस कला के बारे में जाना, तब इसे सीखने की जिज्ञासा बढ़ी। मुझे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी और मुझे इस बात का गर्व है। कालहस्ती शैली की चित्रकारी में बहुत मेहनत और समय लगता है और प्रयोग में आने वाली विशिष्ट कलम को बनाने की विधि भी अनूठी है। पहले बांस के छोटे टुकड़े को चुनकर इसके एक सिरे को नुकीला बनाया जाता है, फिर इसके एक सिरे पर कपड़ा बांधा जाता है और दूसरे सिरे पर धागा बांधा जाता है। इस तरह ये कलम स्पंज की तरह रंग को सोखने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कालहस्ती शैली की चित्रकारी में कपड़े बनाने की प्रक्रिया में 23 चरण हैं। यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, इसमें कुशलता और परिपक्व नजर की जरूरत होती है। अब प्राकृतिक रंगों को कैसे तैयार करते हैं ये जानेंगे तो और हैरानी होगी, परंतु इस कला की जान ये प्राकृतिक रंग और हस्तकला का कौशल ही है। इमली के पेड़ की टहनियों को जलाने से जो कोयला बनता है, उससे कपड़े पर चित्र बनाया जाता है। काला रंग लोहे के चूरे, पानी और गुड़ के घोल से बनता है। फिर इस घोल को 21 दिन रखा जाता है ताकि इसमें खमीर पैदा हो सके। बनाए गए खास कलम से पेंटिंग के किनारे को काले रंग से रंगा जाता है। बाकी रंग बीज, कुचले हुए फूल और पत्तियां तथा खनिज नमक से बनाए जाते हैं। फिटकरी का प्रयोग कपड़े पर रंगों की मजबूती लाने के लिए करते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगी कि इस चित्रकला में पात्रों के चित्रण में भी रंगों का चयन अनूठा और अद्वितीय है। ये कला प्राचीन काल से आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है। कलमकारी कला के कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, दुपट्टे लोकप्रिय हैं। कलमकारी पेंटिंग आजकल घरों और 5 सितारा होटलों की शोभा बढ़ा रही है। फैशन उद्योग भी इस कला को बढ़ावा दे रही है। हम जैसे कलाकारों को कलमकारी चित्रकला के संरक्षण के लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अवसर देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।
इस रिकॉर्डिंग को दूसरी और अंतिम बार सुनने से पहले अब आपके पास 2 मिनट हैं।
नमस्ते, आप सबको स्नेहा रेड्डी का प्रणाम। आज कला प्रेमियों के मध्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको कलमकारी जैसी प्राचीन कला की श्रम साध्य प्रक्रिया और उसकी कुछ बारीकियों पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सब जानते ही होंगे कि चित्रकारी की परंपरा सदियों पहले विकसित हुई है। कलमकारी हस्तकला की प्राचीनतम शैली में से एक है। कलमकारी यानी कलम की कारीगरी, कलम यानी पेन और कारी यानी करने वाला है। वनस्पति रंगों से कपड़े पर बने इस चित्रकारी ने स्थानीय मंदिरों में अपना आश्रय पाया और घुमंतु गवैये गांव-गांव जाकर चित्रकारी पर आधारित हिंदू पौराणिक कथाएं सुनाया करते थे। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि भारत में चित्रकारी के जरिए कहानी सुनाने की कई परंपराएं हैं। कलमकारी में दो प्रमुख शैली विख्यात हैं, कालहस्ती शैली और मछलीपुरम शैली। कालहस्ती शैली में आज भी कलमकारी के लिए कलम का उपयोग होता है, जबकि मछलीपुरम में ठप्पों, जिन पर महीन कारीगरी होती है, का उपयोग होता है। जब मैंने इस कला के बारे में जाना, तब इसे सीखने की जिज्ञासा बढ़ी। मुझे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ी और मुझे इस बात का गर्व है। कालहस्ती शैली की चित्रकारी में बहुत मेहनत और समय लगता है और प्रयोग में आने वाली विशिष्ट कलम को बनाने की विधि भी अनूठी है। पहले बांस के छोटे टुकड़े को चुनकर इसके एक सिरे को नुकीला बनाया जाता है, फिर इसके एक सिरे पर कपड़ा बांधा जाता है और दूसरे सिरे पर धागा बांधा जाता है। इस तरह ये कलम स्पंज की तरह रंग को सोखने का काम करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कालहस्ती शैली की चित्रकारी में कपड़े बनाने की प्रक्रिया में 23 चरण हैं। यह प्रक्रिया बहुत पेचीदा है, इसमें कुशलता और परिपक्व नजर की जरूरत होती है। अब प्राकृतिक रंगों को कैसे तैयार करते हैं ये जानेंगे तो और हैरानी होगी, परंतु इस कला की जान ये प्राकृतिक रंग और हस्तकला का कौशल ही है। इमली के पेड़ की टहनियों को जलाने से जो कोयला बनता है, उससे कपड़े पर चित्र बनाया जाता है। काला रंग लोहे के चूरे, पानी और गुड़ के घोल से बनता है। फिर इस घोल को 21 दिन रखा जाता है ताकि इसमें खमीर पैदा हो सके। बनाए गए खास कलम से पेंटिंग के किनारे को काले रंग से रंगा जाता है। बाकी रंग बीज, कुचले हुए फूल और पत्तियां तथा खनिज नमक से बनाए जाते हैं। फिटकरी का प्रयोग कपड़े पर रंगों की मजबूती लाने के लिए करते हैं। इसमें एक और दिलचस्प बात बताना चाहूंगी कि इस चित्रकला में पात्रों के चित्रण में भी रंगों का चयन अनूठा और अद्वितीय है। ये कला प्राचीन काल से आज तक अपना अस्तित्व बनाए हुए है। कलमकारी कला के कपड़े, साड़ी, ब्लाउज, दुपट्टे लोकप्रिय हैं। कलमकारी पेंटिंग आजकल घरों और 5 सितारा होटलों की शोभा बढ़ा रही है। फैशन उद्योग भी इस कला को बढ़ावा दे रही है। हम जैसे कलाकारों को कलमकारी चित्रकला के संरक्षण के लिए आगे आना होगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अवसर देने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।
इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अब आपके पास शेष समय है।